मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 6 जुलाई 2020 है और आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 4 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं सुरेंद्र यादव, इनका गांव है गईपुरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, शिवांग तिवारी रीवा मध्य प्रदेश से, नेहा गौतम लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और प्रशांत मेघवाल, इनका गांव है अंता, जिला है बारा, राजस्थान से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में, जो कहा जाता है कि इसका जो पाठ्यक्रम है, इसका जो सिलेबस है वो असीम है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इस विषय पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। एक जो बहुत ही दुखद घटना जो दिखाई दे रही है, जो अभी 2-3 दिनों से आप पढ़ रहे होंगे, जो उत्तर प्रदेश में घटित हुई है मित्रों, कि एक अपराधी है जिसका नाम विकास दुबे है। कई साल से वह अपराधी है लेकिन उसे सजा नहीं दी जा सकी है। सजा क्यों नहीं दी जा सकी? सीधी सी बात है कि उसके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हो सका होगा। लेकिन शिकायत मिलने पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने जाती है और पुलिस के साथ उसका जो ग्रुप है, गिरोह है कह लीजिए, उसके साथ मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में कुछ पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। ये घटना आप अखबारों में पढ़ रहे हैं। देखिए, अब एक सामान्य सी घटना है और इस घटना से सीधे सीधे सिविल सर्विस में कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि यह सीधे सीधे कहीं ना कहीं कानून और व्यवस्था से जुड़ी हुई घटना है और आप एक ऐसी नौकरी में जाना चाह रहे हैं जिसका काम ही है कानून और व्यवस्था को व्यवस्थित करना, मेंटेन करके रखना, तो डेफिनेटली फिर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं आपके लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और महत्वपूर्ण इस मायने में कि इस तरह की घटनाओं के घटित होने के बाद आपके विचारों की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। आपको इस पर कुछ विचार करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबसे पहली बात जो आपको सोचना होगा वो ये कि एक व्यक्ति जो बाकायदे कुछ साल पहले एक ऐसे व्यक्ति की उसके दफ्तर में हत्या करता है जिसे मंत्री का दर्जा दिया जा चुका है। देखिए, मंत्री का दर्जा का मतलब एक मायने रखता है, यानी व्यक्ति को हटा दीजिए, पद को ध्यान में रखिए, पद महत्वपूर्ण होते हैं, राइट? व्यक्ति से आपको शिकायतें हो सकती है लेकिन पद की तो अपनी सेंटिटी है। उसकी हत्या की जाती है लेकिन व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जाता। क्यों नहीं ठहराया जाता? अब इसके अपने कारण हो सकते हैं कि जो साक्ष्य देने वाले लोग हैं उन पर दबाव है, डर है, भय है, आतंक है, या यूं कह लीजिए कि जो व्यक्ति है उसके राजनीतिक गठजोड़ है। यहां तक बातें आ रही हैं कि आप कह लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी से गठजोड़ है, जैसे कि अभी जिस तरह से मुठभेड़ हुई। अब ये बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि पुलिस इस तरीके से रात में उस घर पर आने वाली है, इसकी सूचना विकास दुबे को कैसे मिली? सीधी सी बात है कि थाने से ही किसी व्यक्ति ने इस बात की सूचना दी होगी। इसका मतलब है कि जो विकास दुबे है उसका संबंध थाने से है और अच्छे संबंध है। तो प्रशासन को आप इस तरह से मत मान करके चलिएगा कि हाई लेवल का ही कोई कमिश्नर और कलेक्टर होगा, उन्हीं से संबंध है। प्रशासन एक बहुत ही व्यापक रूप में काम करता है, तो अगर प्रशासन के किसी भी व्यक्ति से संबंध है तो सीधी सी बात है कि प्रशासन से आपके संबंध है, राजनीति से आपके संबंध है, धन आपके पास है ही है, आपके पास बाहुबल भी है, गुंडों का गिरोह है। तो ऐसी स्थिति में सीधी सी बात है कि आप ही कानून और व्यवस्था है। तो क्या भारत में यह स्थिति स्वीकार्य है, खासकर डेमोक्रेसी में? और अगर है तो क्यों है और कैसे इस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है? मुझे लगता है कि यह प्रश्न यहां खड़ा हो रहा है और आप सबको इस पर विचार करना चाहिए और कुछ अभी अखबारों में आपको पढ़ने को भी मिलेगा। दूसरा मित्रों, अभी कोरोना वैक्सीन को लेकर के आप देखिए कि ये कहा गया कि 15 अगस्त तक शायद आ जाएगा। 15 अगस्त तक आने की बात की जा रही है संभावना, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई गारंटी दे दी गई है। इसको लेकर के भी अब बातें की जा रही हैं और इस रूप में बातें की जा रही हैं कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो हेड हैं, जिन्होंने ये लिख करके दिया है, जो अलग अलग सेंटर इस पर परीक्षण कर रहे हैं कि इसे जल्दी से कीजिए, 15 अगस्त तक हमें ये वैक्सीन लेकर के आना है, तो उन पर कोई राजनीतिक दबाव है या उन पर कोई ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर है कि 15 अगस्त तक आना ही चाहिए? क्या यह सही है, खासकर वैक्सीन जैसे मामले में जिसका संबंध सीधे सीधे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो यह एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। लेकिन देखते हैं कि यह बात कितनी आगे तक जाती है। इसको लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया ने बकायदे आज अपना एडिटोरियल भी लिखा है, मैं वो एडिटोरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। मित्रों, दो महत्वपूर्ण घटनाएं या कह लीजिए सूचनाएं हैं, घटनाएं तो नहीं कहना चाहिए, एक 2018 में घटित हुई और एक 2020 में घटित हुई। अब इन दोनों को थोड़ा सा जोड़ना है, हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। देखिए, सिविल सर्विस की तैयारी कुछ इसी तरह से करनी पड़ती है ना। डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में चुनाव होते हैं, आप देख रहे हैं कि हर 5 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। यहां तक कि 1975 में जब इमरजेंसी लगा दी गई थी, इसके बाद भी चुनाव हुए। मतलब भारत सही मायने में डेमोक्रेसी का पालन कर रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब है जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही शासन चलाएंगे। पाकिस्तान को आप देख लीजिए, वहां भले ही निर्वाचित, बीच बीच में तो सीधे सीधे वहां डिक्टेटरशिप ही रही, आप कह लीजिए सेना का तंत्र रहा, सेना का भी वहां कितना जबरदस्त प्रभुत्व है आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। तो भारत इस मायने में बहुत बेहतर स्थिति में है। अब आप दो देशों को देखिए, उसमें एक है चाइना और दूसरा है रशिया। रशिया के बारे में हम लोगों ने फ्राइडे को बात की थी कि वहां बकायदे संविधान में संशोधन किया गया, जनमत लिया गया, और अब वहां के जो राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, अब वो 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकेंगे। और जब तक 2036 होगा तब तक उनकी उम्र 84 ईयर्स हो चुकी होगी, तो आप कह सकते हैं कि वो आजीवन राष्ट्रपति बने रहेंगे। दूसरा चाइना, चाइना में भी 2018 में इसी तरह का संशोधन किया गया था। चाइना में यह नियम था कि कोई भी दो बार ही राष्ट्रपति बन सकेगा, जैसे कि अमेरिका में है, लेकिन उस संविधान में संशोधन कर दिया गया और वहां भी अब जो वहां वर्तमान राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, वो आजीवन राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। ठीक है, अब ये बताइए कि ये जो तंत्र है, ये लोकतंत्र है या साम्यवाद है या समाजवाद है या सैन्यवाद है या तानाशाही है, इस पर आप विचार कीजिएगा। और ये देखिए कि ये जो दोनों देश हैं, ये कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट कंट्री रहे हुए हैं। कहीं ना कहीं मैं इसलिए कह रहा हूं कि रशिया में तो चलिए अभी भी कम्युनिज्म है, लेकिन धीरे धीरे लोग अपने को ओपन अप कर रहे हैं। कम्युनिज्म की जगह अब वो समाजवाद कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं, समाजवादी कहलाना, तो वो थोड़ा सा अंतर है। लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम तो अभी भी वो कम्युनिज्म वाला ही है, बाकी दूसरी बातों में भले ही परिवर्तन किया जा रहा हो। तो मुझे लगता है कि ये तथ्य भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, ताकि अगर कभी इस तरह के विश्लेषण की स्थिति आए तो आप बाकायदे इन घटनाओं की भी या कह लीजिए इन सूचनाओं की भी चर्चा कर सके। तो इससे देखिए एग्जामिनर को ये लगता है कि नहीं, आपका जो अध्ययन है वो बहुत व्यापक है और आप चीजों को बहुत सतर्कता के साथ देख और समझ रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वो है असीम पाठ्यक्रम का आतंक। दोस्तों, मेरी जब स्टूडेंट से बात होती है तो ज्यादातर स्टूडेंट मुझे इस बात से बहुत आतंकित दिखाई देते हैं, जो उनकी बातचीत से झलक भी जाता है कि सर, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि YouTube पर जब आप जाएंगे तो YouTube पर इंटरव्यू के बारे में कुछ प्रोग्राम्स डले हुए हैं, है ना, और कुछ तो ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो डेली इस तरह के न्यूज देते रहते हैं कि IAS में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही उटपटांग किस्म के प्रश्न, और वो इंटरव्यू से जुड़े हुए रहते हैं। जो सच पूछे तो कभी नहीं पूछे जाते, आज तक नहीं पूछे गए। इतने स्टूडेंट से मेरी बात हो रही है, बात होती है, मैं खुद भी इंटरव्यू देकर आया हुआ हूं, उस तरह के उटपटांग क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते। और उस तरह के उटपटांग क्वेश्चंस का के आंसर का सिविल सर्वेंट बनने से क्या संबंध है? तो होता क्या है कि जब इस तरह की खबरें स्टूडेंट पढ़ते हैं, देखिए उसमें दोष आपका नहीं है, तो आपको यह लगने लगता है कि भैया ये तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इस तरह के उटपटांग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो अब हम क्या करें? इसका मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा बटोरें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा समझें, ज्यादा से ज्यादा याद करें, ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाएं, ज्यादा से ज्यादा किताबें लेकर के आएं। अखबार पढ़ने में 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं, स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है, मेरे पास मेल आते हैं कि सर 3-3 घंटे तो अखबार पढ़ने में लग जाते हैं, तो अब हम ये बताइए कि दूसरी तैयारी कैसे करें? अभी नौकरी कर रहे हैं तो क्या हम नौकरी छोड़ दें क्योंकि इतना समय नहीं मिल पा रहा है? ये जो सारा संकट है ये क्यों है? ये सारा संकट सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग में ये बात गलत तरीके से बैठा दी गई है कि सिविल सर्विस में कुछ भी पूछा जा सकता है। आप घबराए हुए हैं। जो घबराया हुआ व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? इधर भी हाथ मारेगा, उधर भी हाथ मारेगा, इधर पैर मारेगा, उधर पैर मारेगा, वो हाथ पैर मारता रहेगा क्योंकि उसके अंदर घबराहट है, उसके अंदर एक बेचैनी है, और जो चीज है वो पाना चाहता है, जो उसका उद्देश्य है उसे वो पूरा करना चाहता है। दोस्तों सच पूछे तो यह तैयारी करने का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने का सबसे अधिक अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक तरीका है। देखिए, यूपीएससी बड़े आराम से इस तरह की भी घोषणा कर सकती है कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है इसका कोई सिलेबस नहीं है, हम कोई सिलेबस नहीं बता रहे हैं, हम कुछ भी पूछ सकते हैं। और बता दें कि जो सामान्य व्यक्ति से जो अपेक्षा की जाती है वो हम कुछ भी पूछ सकते हैं, आप क्या कर लेंगे, आप फिर भी तैयारी करेंगे। और मजेदार बात है कि फिर भी सिलेक्शन होगा, लोग सिलेक्ट होंगे, तो यूपीएससी वो कर सकता था। लेकिन क्या यूपीएससी ने ऐसा किया है? यूपीएससी ने सभी का सिलेबस दिया हुआ है, और सिलेबस ही नहीं बल्कि वो हर सिलेबस के साथ में बकायदे इंस्ट्रक्शन भी देता है। आप देखिए, आप जब कंपलसरी में जाते हैं जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में, जनरल लैंग्वेज और जनरल इंग्लिश, उसके बारे में बकायदे उसका इंस्ट्रक्शन है किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कंपलसरी ऐसे पेपर है, ऐसे पेपर में उन्होंने बकायदे बताया हुआ है कि इसके कितने खंड होंगे, कितने कितने शब्दों में लिखना होगा और आपको किस तरह से ऐसे लिखना है, बकायदे निर्देश है। फिर जनरल स्टडीज के चार पेपर दिए हुए हैं, चार पेपर का बिल्कुल उन्होंने वो सेंटर बता दिया है कि इस पेपर, इन पेपर्स में हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चारों पेपर्स के बकायदे उन्होंने सिलेबस दिए हुए हैं, उनकी कोशिश रही है कि थोड़ा डिटेल में ही सिलेबस दें, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट का नाम लिख करके भारतीय इतिहास लिख करके छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं कि अर्थशास्त्र लिख करके और अर्थव्यवस्था लिख करके छोड़ दिया हो, राष्ट्रीय सुरक्षा लिख करके छोड़ दिया हो, यानी उनकी भी बकायदे उन्होंने डिटेलिंग दी हुई है। चारों पेपर की बहुत डिटेल्स में उन्होंने वर्णन किया हुआ है। इसके बाद आपका ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर के सिलेबस तो और भी ज्यादा डिटेल्स में दिए हुए हैं। तो अब ये बताइए कि जब सभी का सिलेबस बकायदे दिया हुआ है तो आपके दिमाग को क्यों ऐसा लगता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है? दोस्तों, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा, मैं अपना निष्कर्ष कुछ भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर आप मेरे निष्कर्ष को जानना ही चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि कैसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, क्या कुछ भी पूछ लिया गया है? ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभार हो सकता है कि प्री में या मेन्स में कोई उटपटांग किस्म का प्रश्न आ गया हो, लेकिन चलिए अगर एक दो आ भी जाए, तीन चार भी आ जाए, अगर चार पेपर आप मेन्स के लेते हैं तो टोटल लगभग लगभग 80 क्वेश्चन बनते हैं। अगर 80 क्वेश्चन में दो तीन चार क्वेश्चन अगर उटपटांग आ भी गए हैं या जो इस तरह के आ गए हैं जिसे आप कह सकते हैं कि कुछ भी पूछ लिया गया, तो क्या फर्क पड़ता है? प्रीलिम्स में भी इसी तरह से मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है और उसमें 5-7 क्वेश्चन इस तरह से आ गए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप 50% स्कोर करके दिखा दीजिए प्रीलिम्स में और मेंस में, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो 50% तो गुंजाइश है ना। तो ये जो असीम है, कुछ भी पूछा जा सकता है, डाल दीजिए उसको कि 50% हमको स्कोर नहीं करना है, उसमें हम उस खाते में डालते हैं। लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको तो व्यवस्थित तरीके से कीजिए, उसको तो वैज्ञानिक तरीके से कीजिए, उसे तो स्थिर मन से कीजिए, उसे घबराहट के साथ मत कीजिए। अगर आप उसे घबराहट के साथ करेंगे तो आप जो वास्तव में तैयारी कर सकते थे उसे भी आप खो देंगे। प्लीज इस बात पर विश्वास करें और थोड़ा सा ध्यान भी रखें। तो मित्रों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: पवन कुमार जमशेदपुर झारखंड से, श्रद्धा त्रिपाठी, प्रीति पाठक, सैकत बैनर्जी पश्चिम बंगाल से, और डॉक्टर सुनीता विवेक। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।